ये आकाशवाणी है। अब आप सकलेन अख्तर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में भाग लेने के लिए आज शाम इटली के अपूलिया के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भारत इटली रणनीतिक भागीदारी और हिंद प्रशांत तथा भूमध्य सागर क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि वे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार तीसरे कार्यकाल में G7 बैठक में भाग लेने के लिए इटली की अपनी पहली यात्रा से वह प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल इटली की प्रधानमंत्री की भारत की दो यात्राओं से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में कृपांक प्राप्त करने वाले 1563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट ने आज कहा कि इस बारे में शीघ्र ही सूचना जारी की जाएगी और इन परीक्षार्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी। एजेंसी ने कहा कि दोबारा परीक्षा का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया गया है। न्यायालय ने 1563 परीक्षार्थियों को प्रदान किए गए अनुग्रह या पूरक अंक वापस लेने का निर्देश दिया था। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की बात से इनकार किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सरकार ने आज कहा कि वे गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी निगरानी रख रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि जमाखोरी रोकने और गेहूं के बाजार मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने रबी विपणन सीजन 2024 के दौरान 112 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन की सूचना दी है। भारतीय खाद्य निगम ने 11 जून तक लगभग 266 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। उसी अवधि के दौरान मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता जो लगभग 184 लाख मीट्रिक टन है को पूरा करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर गेहूं का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध होगा। एनसीआरबी ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप एनसीआरबी आपराधिक विधि का संकलन जारी किया है। नए आपराधिक कानून अगले महीने की पहली तारीख से प्रभावी हो जाएंगे। इस ऐप में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। ये ऐप ऑफलाइन भी काम करेगा। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होगा। अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और डॉ पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में 10 जून से फिर से नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आज इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि पूर्व आईपीएस श्री डोभाल और पूर्व आईएएस श्री मिश्रा की नियुक्तियां प्रधानमंत्री के कार्यकाल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक जारी रहेंगी। श्री डोभाल और श्री मिश्रा दोनों को उनके कार्यकाल के दौरान वरीयता में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में नमामि गंगे मिशन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान पर्यावरणीय प्रवाह निगरानी प्रणाली जारी की गई, इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने विकसित किया है। बैठक के दौरान श्री पाटिल ने परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधानों की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के कारण कल उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्वी भारत में ऑरेंज तथा रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले दो दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गंभीर लू की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आरके जनामणि ने कहा है कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में औसत तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है। स्टटगार्ड ओपन में भारतीय खिलाड़ी यूकी भांभरी और फ्रांस के अल्वानो ओलिवेटी की जोड़ी ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 160 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।